ओम शांति। सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है। मंत्रास फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, आज का विषय बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अनुभव से जुड़ा हुआ है। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य वक्ता और हमारे आदरणीय स्पीकर्स को। सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच बीके कंचन बहन पहुँचे हुए हैं, आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं एडमिनिस्ट्रेशन विंग के मुजफ्फरपुर से। हमारे भ्राता मिस्टर अशोक महेश्वरी जी, आप आ जाइएगा, एडिशनल जनरल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज हेडक्वार्टर। हमारे बीच है डॉक्टर विजय कुमार चड्डा जी, IRS प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर से। कृपया आप मंच पर आ जाएंगे सभी। तो गुड एडमिनिस्ट्रेशन का आधार है कि कोई भी कार्य को जब हम शुरू करते हैं तो साइलेंस और मेडिटेशन के साथ। तो आइए कुछ क्षण के लिए हम परमात्मा की याद में बैठेंगे, और हमारे जो पीछे की साइड में हमारे ऑडियंस बैठे हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे के काफ़ी चेयर्स जो हैं वो खाली हैं, तो आप कृपया उठ के आगे की साइड में आ जाएं। सभी वहां से आगे की सीट्स में आ जाएंगे। धन्यवाद। तो आइए बैठते हैं कुछ क्षण के लिए परमात्मा की याद में।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। जग संतरी से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
ओम शांति। आज का सेशन प्रारंभ करने से पूर्व मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच कुमारी यशवेश्री श्री फ्रॉम भोपाल। बहनें आएंगी और अभी आपके सामने बहुत ही सुंदर वेलकम डांस करने से पूर्व वो रेडी रहें, और उससे पूर्व आप सभी हमारे मंच पर जो हमारे आदरणीय स्पीकर्स हैं उनका वेलकम करने जा रही हैं हमारी बहनें बैजेस और बुकेस के द्वारा। और साथ ही साथ हम आप सभी का भी जो इस ऑडियंस में गुड एडमिनिस्ट्रेशन को लिए हुए अनुभव को लिए हुए बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तालियां बजाकर आप भी सभी का स्वागत करते रहे। अगर हमारे बीच हमारे डॉक्टर विजय कुमार चड्डा जी पहुंच गए हो तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं कि वो मंच पर आएंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि चमन में हर फूल की अदा अपनी अपनी होती है। कहते हैं कि चमन में हर फूल की अदा अपनी अपनी होती है। और मेरे सामने गुलदस्ता आ ही गया है तो मुझे याद आ गई पंक्तियां कि हर चमन की में हर फूल की अदा अपनी अपनी होती है और इन फूलों का गुलदस्ता बना दिया जाए, इन फूलों का गुलदस्ता बना दिया जाए तो बात ही कुछ और होती है, बात ही कुछ और होती है। गुलदस्ता आप सभी हमारे इस सभा में बैठे हुए सभी हमारे मेहमानों का, भाई बहनों का बहुत ही दिल से स्वागत करते हैं हम। और मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे आज का बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत करने जा रही हैं, आपका सभी का स्वागत करने के लिए इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। भोपाल से ये बहनें हमारे बीच पहुंची।
मंगल हो गया इहाने से
अभिनंदन है, नेह पुष्प से आपका
स्वागत है, अभिवादन है, प्रेम पुष्प से आपका।
आप पधारे बड़ी खुशी है, हर दिल का कहना
है, अभिनंदन है, स्नेह पुष्प से आपका। बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया भोपाल से आई हुई हमारी इन बहनों ने, जो कि आज के विषय को एक तरोताजा रूप से गुड एडमिनिस्ट्रेशन का प्रतीक मैं समझती हूँ, क्योंकि आपने एक बात और ऐड सुनी कि इस गीत में न केवल आपका अभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन फिर से आने का आपको निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप इस घर में इस स्थान पर आते रहिएगा। आज का विषय बहुत ही अनुभव से जुड़ा हुआ है। हमारे स्पीकर्स इस विषय पर अपने अनुभव से तो प्रकाश डालेंगे ही। मंत्रास फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, इस विषय को थोड़ा सा मैं ओपन करना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं अपना पीएचडी कर रही थी स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्सल वैल्यूज में, तब मंत्रास को थोड़ा गहरे रूप से इसका अर्थ समझा और कैसे वो आध्यात्मिकता और मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है ये शब्द। अगर हम इस शब्द को डिवाइड करें हिस्टोरिकली और एंशियंट मीनिंग में जाएंगे, तो मंत्रास जो शब्द है, मंत्र पहला वर्ड जो है मन, मानस, माइंड पावर से जुड़ा हुआ है, और त्रा का मतलब है इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइंड, सैक्रेट, अटरेंस, रिपीटेड टू एड कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन। इन मॉडर्न बिजनेस कॉरपोरेट मंत्र इज गाइडेड प्रिंसिपल, स्लोगन और कोर बिलीफ दैट इज रिपीटेड फ्रीक्वेंटली टू कीप अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन देयर अल्टीमेट गोल। बहुत सुंदर जो है ये एंशियंट से मॉडर्न कॉन्सेप्ट को लेता है, और आपको इस बात का ज्ञान होगा कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो भी सेजेस थे, संत थे प्राचीन काल में, वो मंत्रास का उच्चारण जब करते थे तो उनको सिद्धियां प्राप्त होती थी। वो प्रकृति पर भी अपना बहुत कंट्रोल करते थे, क्योंकि पहले माइंड कंट्रोल होता था, और जब माइंड कंट्रोल होता था तो उसके बाद वो कर्मा के ऊपर, एक्शंस के ऊपर कंट्रोल करते रहे हैं। ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमारे सेजेस के, चाहे स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, महात्मा गांधी को ले लीजिए, साइलेंस को ले लीजिए, कि उन्होंने साइलेंस पे बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशंस पे एक्सपेरिमेंट किए। अगर हम इन दोनों शब्दों को ले, मंत्रा में जो मन की पावर को लिया हुआ है, अब इनको दोनों को कंबाइन करें एंशियंट से मॉडर्न गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, To understand how to lead and manage effectively, we can look at the two powerful frameworks. The ancient focus driven concept of a mantra, and second, the practical execution driven world of good administration. When combined, they create a leadership style that is both deeply purposeful and highly effective and elevated. तो दोनों को जोड़कर अगर हम लेते हैं तो आज का जो विषय है वो हमें एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम किसी भी पद पर हों, कोई भी कार्य कर रहे हों, वो हमारा जो प्रशासन है उसका जो बीज है वो मन से शुरू होता है, मन की शक्ति से शुरू होता है, और फिर जब हमें हमारे कार्यों में उसका रूप नजर आता है तो हम अपने कार्य को बिल्कुल फोकस कॉन्सेंट्रेटेड, और हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत सुंदर निकलता है। लेकिन इस विषय पर और अधिक आपको जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। हमारे बीच बैठे हैं हमारी आदरणीय बीके कंचन बहन, जो जोनल कोऑर्डिनेटर है एडमिनिस्ट्रेशन विंग की, मुजफ्फरपुर सब जोन से हैं, बेगूसराय बिहार से हैं, और आप बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए। जब बहुत छोटी आयु थी 6 वर्ष की, तब से आप जुड़ गए, और आप अभी 25 वर्षों से समर्पित सेवाएं दे रहे हैं। आपने श्रीमद् भगवद गीता और रामायण के आध्यात्मिक रहस्यों को बहुत सुंदर प्रवचन माला के रूप में भी प्रस्तुत किया है, और बहुत सारे प्रांतों में, बहुत सारे शहरों में आपने मूल्य निष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा भी आप दे रही हैं। आपने विभिन्न कंपनीज में, बहुत सारे संस्थानों में आपने, जिसमें विशेष रूप से इंडियन ऑयल, NTPC, HU, RL और LIC बैंक्स आदि में आपने काफ़ी अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। एडमिनिस्ट्रेटर्स को आपने बहुत इंस्पायर किया है, और वैसे तो जैसा इनका अनुभव कहता है कि आप वैसे डॉक्टर बनना चाहती थी, आपने अपना कंपटीशन भी जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपने कंप्लीट किया, लेकिन आप चाहती थी बनना स्पिरिचुअल डॉक्टर, रूहानी डॉक्टर बनना चाहती थी। तो उसके बाद आपका जो रुख परिवर्तन हुआ, तो आपने अपनी सेवाओं को इस रूप में समर्पित किया। तो आइए सुनते हैं, क्योंकि वो खुद राजयोगा टीचर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, तो आपसे शेयर करेंगी आज के विषय पर। अब मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ, हमारे बीच पहुँच गए हैं हमारे बहुत ही आदरणीय आज के गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता डॉक्टर विजय कुमार चड्डा जी। आप प्रिंसिपल कमिश्नर हैं इनकम टैक्स कानपुर से। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया आपका तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। और मैं बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि आपका स्वागत करेंगे फूलों के द्वारा। आदरणीय वेलकम। तब तक हमारे बीच मैं कंचन बहन को आमंत्रित कर रही हूँ, जो आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
ओम शांति। हमारे मंचासीन अतिथि का स्वागत हो रहा है गुलदस्ते के द्वारा, आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। आज का जो ये मॉर्निंग सेशन है, बहुत सुंदर इसका विषय है, मंत्रास फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन। यूं तो आप सभी अनुभवी आत्माएं इस सभा में उपस्थित हैं, आप सभी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और इसलिए आपका इस कॉन्फ्रेंस में आना हुआ है। तो आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप सभी अपने आप को समझते हैं कि हम सभी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं? जो समझते हैं वो हाथ उठाइए। वेरी गुड, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि आप देखिए, बहुतों को इस कॉन्फ्रेंस के लिए इनविटेशन गया, लेकिन आप ही यहां उपस्थित क्यों हुए? क्योंकि आप सभी बहुत स्पेशल सोल्स हैं। आप सभी के अंदर बहुत स्पेशल क्वालिटीज हैं और आपके अंदर हमेशा कुछ बेहतर करने का उमंग है, इसलिए आज आप सभी यहां उपस्थित हैं। और आप सब विशेष आत्माएं हैं, आप भगवान के घर में आए हैं, तो पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं मंत्रा फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन। हम सभी अभी बिनी बहन से सुन रहे थे कि मंत्र उसको कहा गया जिसको चैंट करने से हमारे मन को शांति मिले। मंत्र उसको कहा गया जिसको चैंट करने से हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मंत्र उसको कहा गया जो हमारे अंदर एकाग्रता को डेवलप करता है। जब हम गुड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी कार्य अगर आप बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मन का शांत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मन शांत होगा, आपके मन में खुशी होगी, उमंग उत्साह होगा, तो आप हर कार्य को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। है या नहीं? आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है तो हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो जब हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं के ऊपर काम करना जरूरी है। हमें अपने भीतर जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सेल्फ एम्पावर नहीं होंगे तब तक हम अपने साथ काम करने वाले लोगों को एम्पावर्ड नहीं कर सकते। जब तक हम सेल्फ एम्पावर्ड नहीं होंगे तब तक जो आउटकम मेरे द्वारा आना चाहिए वो 100% नहीं हो सकता है। इसलिए आप सब हैं ही गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जिस भी संस्था में हम कार्यरत हैं और जिस भी पद पर हम कार्यरत हैं, हम अगर बेहतर इफिशियंसी के साथ काम करना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं पर फोकस्ड होने की जरूरत है। और जब आपका ध्यान पहले स्वयं पर होगा, स्वयं को सशक्त करने पर होगा, तो बाकी कार्य आपके और सहज हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मंत्रास फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहली बात जो हमें ध्यान पर रखनी है वो ये है कि अपने साथ काम करने वाले लोगों को एम्पावर्ड रखना। पीपल फर्स्ट। आप देखिए, जिस भी संस्था में आप हैं, आप जिन लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं, हमें सबके गुणों को देखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ काम करने वाले लोग एम्पावर्ड रहें, तो आवश्यकता क्या है, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? सामने वाले के गुणों के ऊपर, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण इनबिल्ट है या नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर कोई गुण नहीं हो? है कोई ऐसा व्यक्ति? नहीं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता है। तो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो हर व्यक्ति के गुणों को देखे, उनके गुणों के आधार से उनको सम्मान दे और उनके गुणों के आधार से उनके साथ व्यवहार करे, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके कार्य भी सुचारू रूप से संपन्न होंगे और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, उस डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। और इसकी बहुत अच्छी प्रेरणा हमें मिलती है श्री राम से। आप सब ने वो कहानी सुनी है कि जब राम सेतु बन रहा था तो बांदरी सेना ने बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर्स अपने सिर पर उठा करके समुद्र में डालना शुरू किया पुल बनाने के लिए। सबने वो कहानी सुनी है जहां बांदरों की सेना बड़े बड़े बोल्डर सिर पर उठा करके समुद्र में डाल रही थी पुल बनाने के लिए, वहीं एक छोटी सी गिलहरी भी क्या कर रही थी, अपने मुख में कंकड़ डाल करके वो समुद्र में डाल रही थी। और उसके अंदर ये भाव था कि मैं भी अपना सहयोग इस कार्य में दूं। लेकिन जो बांदरी सेना थी, उन्होंने गिलहरी को जब देखा ये एफर्ट करते हुए, तो वो हंसने लगे और उन्होंने गिलहरी को क्या कहा, अरे गिलहरी तुम साइड हो जाओ, तुम्हारे कंकड़ डालने से कुछ होने वाला नहीं है, तुम साइड हो जाओ नहीं तो तुम पीसी जाओगी। तो कहते हैं गिलहरी श्री राम की शरण में गई और श्री राम ने उसके एफर्ट को कंसिडर किया, उसका उमंग उत्साह बढ़ाया, क्योंकि श्री राम ने यह देखा कि गिलहरी जो कर सकती थी वो अपने एफर्ट का डबल कर रही थी। और इसलिए गिलहरी के एफर्ट को श्री राम ने कंसिडर किया और उसको भी उमंग उत्साह बढ़ा करके उस कार्य में सहयोग देने दिया। तो जहां बांदरी सेना बड़े बड़े पत्थरों का बोल्डर्स समुद्र में डाल रही थी पुल बनाने के लिए और पुल बनता ही जा रहा था, वहीं गिलहरी के द्वारा डाले गए छोटे छोटे कंकड़ उन पत्थरों के बीच जो गैप थे उसको भरने का काम कर रहे थे। इसी प्रकार से कई बार दीवारों पर लगी ईंट ये समझती है कि मेरी वजह से ये दीवार खड़ी है, परंतु जहां दीवार को खड़ा करने में हर ईंट की एक अहम भूमिका है, वहीं उन रेतों की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता है जिसकी वजह से उन ईंटों के बीच जो गैप है उसको फिलअप किया गया। क्या उसको नकारा जा सकता है? नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके संस्थान में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में छोटा से छोटा कार्य करने वाला व्यक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के पुरुषार्थ को आप नकारिए मत, किसी को भी छोटा मत समझिए और किसी के कार्य को भी आप नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि उसका छोटा एफर्ट भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में एक बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, हर व्यक्ति का महत्व है और हर व्यक्ति के गुणों के आधार से आप उनको क्या कीजिए, सम्मान दीजिए। आपने सुना होगा थॉमस एडिशन जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया। कल आप सुन रहे थे कि जब उनको असफलता मिली तो उन्होंने कहा कि मैंने 99 वो तरीके सीखे जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए उसके आगे की स्टोरी बहुत यूनिक है। जब बल्ब बनकर तैयार हुआ और उसका डेमोन्स्ट्रेशन होना था तो उनका जो असिस्टेंट था जिसको डेमोन्स्ट्रेशन देना था, हजारों लोग इंतजार में थे कि आज डेमोन्स्ट्रेशन होगा और इतना एफर्ट के बाद बल्ब बन के तैयार हुआ था और उसका डेमोन्स्ट्रेशन होना है। आप समझ सकते हैं कि पब्लिक के बीच कितना इंथुजियाज्म रहा होगा उस दृश्य को देखने के लिए और थॉमस एडिशन के अंदर भी कितनी खुशी रही होगी कि आज उसके वर्षों की तपस्या क्या होने जा रही है, सफल होने जा रही है। पर अचानक एक इंसिडेंस हुआ। इंसिडेंस क्या हुआ कि जिस बल्ब का डेमोन्स्ट्रेशन होना था उनके असिस्टेंट के हाथ से वो बल्ब गिर गया और वो टूट गया। मेरे भाई बहनों, आप सोचिए अगर आप उस जगह होते तो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या उस व्यक्ति को फिर से मौका देते? आप में से कौन कौन कहते हाँ मैं उसी व्यक्ति को फिर से मौका देता, वो जरा हाथ उठाइए। वेरी गुड, आप तो बहुत पॉजिटिव हैं। अच्छा, जो ये कहते नहीं, जिसने एक बार गलती कर ली और सपना साकार हो रहा था थॉमस एडिशन का, वहां उस व्यक्ति से भूल हुई, लेकिन आप उनकी विशेषता देखिए, उनके नजरों में कार्य की प्राथमिकता नहीं थी पहले, उनके नजरों में व्यक्ति की प्राथमिकता पहले थी। दोबारा जब डेमोन्स्ट्रेशन देना हुआ तो उन्होंने फिर से अपने उसी असिस्टेंट को चूज किया, फिर से उसका उमंग उत्साह बढ़ाया और नेक्स्ट डे के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसको तैयार किया। तो जब उन्होंने उसी असिस्टेंट को सेलेक्ट किया तो लोगों ने उससे सवाल पूछे, आप ये क्या कर रहे हैं? जब आपको इस व्यक्ति से कल धोखा मिला तो आज उसी को ये अपॉर्चुनिटी देने की क्या जरूरत है? आप किसी और को भी तो ये अवसर दे सकते थे ना। तो थॉमस एडिशन ने पता है क्या कहा? उसने कहा कि जो बल्ब टूट गया, ब्रोकन बल्ब कैन बी रीमेड, लेकिन ब्रोकन हार्ट कैन नॉट बी मेड ईजियर। जो बल्ब टूट गया वो फिर से आसानी से बन सकता है, लेकिन दिल टूट जाए तो टूटे दिलों को जोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अगर आपने व्यक्ति को इंपावर कर लिया ना तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके डिपार्टमेंट का बड़ा बड़ा कार्य सफल होगा। इसलिए पहला मंत्र हम क्या याद रखेंगे, बोलिए, पब्लिक पीपल फर्स्ट। अपने साथ काम करने वाले लोगों का हमेशा उमंग उत्साह बढ़ाइए। अगर उसकी कैपेसिटी 50% है तो आप उसके इंथुजियाज्म को इतना बढ़ाइए कि वो आपको 100% आउटपुट दे सके। ये एक कुशल प्रशासक का काम है कि अपने साथ रहने वाले लोगों के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना, उनको उमंग उत्साह दिलाकर और उनको अपने स्ट्रेंथ के बारे में अवगत कराना है। व्यक्ति के अंदर बहुत सारी शक्तियां छिपी हैं, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है। लेकिन एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो अपने साथ काम करने वाले लोगों को अपनी शक्तियों का क्या करें, एहसास करा दे। इसलिए आपने वो स्टोरी भी सुनी है कि जब हनुमान जी को समुद्र पार करना था तो मतंग ऋषि का उनको श्राप था कि उन्हें अपनी शक्तियां भूल जाएंगी, लेकिन जब कोई उन्हें याद दिलाएगा तो उन्हें अपनी शक्तियां क्या होगी, याद आएगी। जब सीता जी का अपहरण हुआ तो जटायु ने मरते वक्त श्री राम जी को ये हिंट दे दिया था कि रावण उनको किस तरफ ले गया है, दक्षिण की तरफ ले गया है, है ना। तो जब दक्षिण की ओर वो बढ़े और सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तो सुग्रीव ने अपनी सेना की चार टुकड़ियां बनाई, एक को नॉर्थ में भेजा, एक को ईस्ट में भेजा, एक को वेस्ट में भेजा, और चौथे जो बहुत शार्प थे, इंटेलिजेंट थे, हनुमान जी और उनके साथ कुछ लोग और, उनको किस तरफ भेजा, साउथ की तरफ भेजा। और जब वो समुद्र के किनारे पहुंचे और समुद्र पार करना था तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की उनको स्मृति दिलाई कि बाल्यकाल में दोनों ने बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल कर ली थी, इसलिए उनके लिए समुद्र पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्तियों की स्मृति आई, उन्होंने छलांग लगाई और समुद्र को पार कर लिया। अर्थात हमेशा हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने साथ काम करने वाले लोगों को मोटिवेट कर सकें, उनको ये एहसास दिलाएं कि यस यू कैन डू इट, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप वो कार्य कर सकते हैं। और जब आप उनको अपने शक्तियों की स्मृति दिलाएंगे तो आप फील करेंगे कि जिसका आउटकम 50% था उसका अब आउटकम क्या हो गया, 75% हो गया, 80% हो गया। तो ये है अपने साथ काम करने वाले लोगों की अहमियत को समझना गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और हमेशा सफलता का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना है, मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से ये डिपार्टमेंट इतना स्मूथली रन कर रहा है, या मैं हूं तब सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो रहे, नहीं। हमेशा हमें सफलता का श्रेय अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति को देना है, मैं नहीं करना है। इसलिए आपने सुना होगा जब हनुमान जी ने छलांग लगाया तो सबसे पहले एक पर्वत पर खड़े हुए तो वो पर्वत धस गया। इसके बाद उनके सामने कौन आया, सुरसा आई। जब उनके सामने सुरसा आई तो सुरसा ने ये कहा, उनको डराया कि मैं तुमको कहां जाऊंगी। लेकिन आप देखिए हनुमान जी ने उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया। जब सुरसा ने अपना मुख एक योजन का किया तो हनुमान जी दो योजन के हो गए, जब सुरसा ने अपना मुख दो योजन का किया तो हनुमान जी चार योजन के हो गए, जब सुरसा ने अपना मुख चार योजन का किया तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए, और जब सुरसा ने अपना मुख 16 योजन का किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और कहते हैं कि जब सुरसा ने अपना मुख 32 योजन का किया तो हनुमान जी 64 योजन के हो गए। और अब यहीं पर हनुमान जी ने स्टॉप लगाया। अब क्या किया, जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बड़ा करती गई, हनुमान जी भी अपना स्वरूप और विशाल करते गए। और जैसे सुरसा ने अपना मुख 64 योजन का कर लिया तो हनुमान जी ने अपना स्वरूप क्या किया, एकदम छोटा कर दिया और उनके मुख में प्रवेश किए और निकल गए और बोला अब बता अब क्या करना है, अब तो तेरा कार्य भी पूरा हो गया ना। तो माना बहुत आवश्यकता है हमें इन क्वालिटीज को अपने जीवन में यूज करने की, कि जीवन में यश रूपी सूरसा जब अपना मुख पखार ले तो आप छोटे बन जाइए। जहां अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना हो वहां छोटे बनिए, और जहां ताकत का प्रदर्शन करना हो वहां क्या बन जाइए, बड़े बन जाइए। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही अपने आप को छोटा समझकर चलता है, कभी अपनी महिमा स्वयं अपने मुख से नहीं करता है। आपके कार्य आपकी महिमा करें, आपके साथ रहने वाले लोग आपको अप्रिशिएट करें, लेकिन खुद आप अगर बुद्धिमान हैं तो बुद्धिमता की ये निशानी है कि आप हमेशा अपनी सफलता का श्रेय किसको दे, अपने साथ काम करने वाले लोगों को दे। तो जहां ताकत दिखाना हो वहां बड़े बन जाइए, और जहां बुद्धि दिखानी हो वहां क्या बन जाइए, छोटे बन जाइए। इसलिए जब पहाड़ पर खड़े हुए हनुमान जी तो पहाड़ धस गया, और जब सुरसा ने मुख बड़ा किया तो छोटा बन करके उसके मुख से बाहर निकल गए। तो हर सिचुएशन को टैकल करने की कला हमारे अंदर तब आती है जब हमारे अंदर नम्रता है, निरहंकारिता है। अब दूसरा मंत्र एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये है कि हमारा चरित्र नोबल होना चाहिए, नोबल कैरेक्टर होना चाहिए हमारा। हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जिसमें ऑनेस्टी भी हो, और साथ साथ हमारे व्यक्तित्व में डिसिप्लिनरी एक्शंस हो। हमें हमेशा जीवन में याद रखना है जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। आजकल लोग क्या कहते हैं, सब तो ऐसा ही कर रहे हैं, मेरे एक अच्छा करने से क्या होगा। लेकिन हमें जीवन में इस मंत्र को याद कर लेना है, मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाएगा और दूसरों का कर्म उनका भाग्य बनाएगा। मेरा कर्म मेरी डेस्टिनी तैयार करेगा और दूसरों का कर्म उनकी डेस्टिनी को तैयार करेगा। तो क्या मुझे दूसरों की वजह से अपने भाग्य को लकीर लगानी है, हाँ या ना, क्या कहते हैं आप? हम अपने कर्म के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कोई हमें देख रहा हो या कोई हमारे ऊपर विजिलेंस कर रहा हो तभी हम एक्यूरेट रहेंगे, नहीं। अगर मुझे कर्म फिलॉसफी पता है तो मुझे हमेशा ध्यान रहेगा कि मेरा एक एक कर्म मेरा भाग्य का निर्माण कर रहा है। इसलिए हर कर्म मेरा कैसा हो, हर कर्म कैसा हो, श्रेष्ठ हो। और हर कर्म हमारा श्रेष्ठ तब होगा जब हम हाई एनर्जी लेवल पर होंगे, ठीक है। आज कहीं ना कहीं लोगों के कर्मों में त्रुटियां क्यों आ रही है, क्योंकि आपने देखा ना, हम सब की बैटरी क्या हो गई है, बैटरी क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। हाँ अच्छा, आप तो इस सुंदर ज्ञान सरोवर परिसर में पहुंचे हैं, 4 तारीख से आप यहाँ हैं। अभी तो मैं समझती हूँ कि अब आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं है, अब तो चार्ज हो गई है ना। कौन कौन चार्ज हो गए हैं, सभी हो गए हैं। चलिए अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबकी बैटरी चार्ज हो गई है यहाँ आके। बैटरी चार्ज कैसे हुई? कैसे हुई? क्योंकि आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत हुई। बैटरी चार्ज कैसे हुई? अभी तक आप अपने कार्यों का ध्यान देते थे, आपका ध्यान आपके कार्य क्षेत्र पर था, आपका ध्यान अपने परिवार पर था, अपने बच्चों पर था, सबका आप ध्यान रख रहे थे। लेकिन एक चीज जो हम सबसे मिस हो रही थी वो कौन सी थी? कि सबका ध्यान रखते रखते एक चीज हम भूल गए। वो कौन सी चीज थी? हाँ, कौन सी चीज थी? हम खुद का ध्यान रखना भूल गए, राइट? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? और आप जब यहां आए ना, तो आपने ये सीखा कि हमें सब चीजों का ध्यान तो रखना है, लेकिन उसके साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना है। अगर खुद का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप अपने इनर वर्ल्ड में एम्पावर्ड होंगे तो आउटर वर्ल्ड में सारी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जब खुद का ध्यान रखने की बात आई तो आपको यहां क्या क्या ट्रेनिंग्स मिली? तीन चीजें आप यहां से लेके जा रहे हैं। एक, रोज सुबह उठ करके हम सबको अपने अंदर क्या डालना है? पॉजिटिव इनपुट्स डालना है। आप सुबह उठकर मेडिटेशन कीजिए, यहां सुबह स्पिरिचुअल क्लास चलती है, ताकि सुबह सुबह आप अपने मन के अंदर कौन सा डाटा डालें? पॉजिटिव। जो सुबह सुबह आपने मन में फीड किया, आपने मेडिटेशन किया, आपने स्पिरिचुअल क्लास सुनी, तो जो पॉजिटिव डाटा आपके मन में फीड हुआ, उस पॉजिटिव को फीड करने का उद्देश्य यही है कि सारा दिन आप उसको अपने कर्म में क्या कीजिए? इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आप यहां से जाएंगे भी ना, तो आप सुबह उठकर जब मेडिटेशन के शेड्यूल को कंटिन्यू करेंगे, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लेकर स्पिरिचुअल क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दें, तो आप फील करेंगे कि जो पॉजिटिविटी अर्ली मॉर्निंग आपने अपने अंदर डाली, वो किस लिए आपने डाला? क्योंकि सारा दिन उसकी एनर्जी आपको आपके वर्क प्लेस पर हेल्प करेगी, तो सारा दिन उसको आपको यूज करना है। और तीसरा, आपको सबसे क्या लेना है? आपको सबसे दुआएं लेनी है। ये तीन फॉर्मूला जीवन में हमेशा याद रखिए, अपनी बैटरी को चार्ज रखने का। कौन सा तीन फॉर्मूला? फर्स्ट, हमको अपने मन को पॉजिटिव इनपुट देना है। जो हमने इनपुट दिया उसके आधार से सारा दिन हमें कर्म करना है। और तीसरा, हमें सबसे दुआएं लेनी है। और दुआओं की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। दुआएं जीवन में असंभव को संभव कर सकती है, राइट? जो काम धन से संभव नहीं है, वो काम किस चीज से संभव है? किस चीज से संभव है? दुआओं से संभव है। इसलिए अगर आपका जीवन मूल्यनिष्ठ है, अगर आप ऑनेस्टी से कार्य कर रहे हैं, आप अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रेंथन करके कार्य कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सबसे क्या मिलेंगी? क्या मिलेंगी? दुआएं मिलेंगी। मैं हमेशा कहती हूं, अगर आपके पास धन आया या आपके पास कोई भी चीज आई, लेकिन किसी की बद्दुआ लेकर अगर वो चीज आई है, तो ना वो वस्तु आपको सुख देगी, न शांति देगी, न खुशी देगी। अगर आपके पास धन भी आया, अंडरलाइन कर लीजिए, किसी की बद्दुआ लेकर आया है,
तो वो धन ना आपको शांति देगा, ना खुशी देगा, ना सेहत देगा। और धन आया पॉजिटिव वे से आया, ऑनेस्टी से आया, तो वो धन आपको शांति भी देगा, खुशी भी देगा, सेहत भी देगा, और हमेशा आप जीवन में लंबे काल तक सफल रहेंगे। ये है आपके जीवन में ऑनेस्टी की कमाल। इसलिए टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, हमेशा याद रखिए, मेरा कर्म मेरी डेस्टिनी तैयार कर रहा है। इसलिए मुझे जीवन में सिर्फ धन नहीं कमाना है, धन के साथ साथ और क्या कमाना है बताइए? आज से क्या लक्ष्य रखेंगे? हमें धन के साथ साथ दुआएं भी कमानी है। और एक कहावत है, जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होती है, जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होती है, और जब मिल जाए सद्गुण का साथ तो बात खुदा से होती है। तो आप एक श्रेष्ठ वातावरण में आए हैं जहां आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, और यही आपको एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा। आगे हम देखें कि फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन आप हर दिन अपने कार्यों की चेकिंग करें। जीवन में हमेशा याद रखिए, मुझे अपने आप को चेक करना है और चेंज करना है। अकाउंटेबिलिटी एवरी डे। हम ये देखें कि जो भी हम कमिटमेंट्स करते हैं, क्या हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं? कई बार हम अपने लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स कर लेते हैं लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम फेलियर होना शुरू हो जाता है। और हमें हमेशा इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी कमी अगर आपके सिस्टम में प्रवेश कर रही है तो किसी भी कमी को नजरअंदाज मत कीजिए। अपने आप को हर कार्य के लिए जिम्मेदार समझिए। जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। आप परिवार में हैं, आपके बच्चे हैं, जब आप देखते हैं कि आपके बच्चे कैपेबल हो गए हैं तो बच्चों को जिम्मेदारी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो मांगते भी रहे तो भी आप उनको चाबी तब तक नहीं सौंपते हैं जब तक आप आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि ये कैपेबल है या नहीं। ऑटोमेटिकली आप अपनी जिम्मेवारियां ट्रांसफर कर देते हैं उनकी कैपेसिटी को देख करके। ऐसे ही आप हर कार्य के लिए स्वयं को जिम्मेदार समझिए। अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो रही है तो अपने मिस्टेक के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए। अपनी गलतियों से अनुभव लेकर के आगे बढ़िए। जीवन में हमेशा याद रखिए, अगर आपसे कोई गलती भूतकाल में हुई है, मान लीजिए आज आपने कोई कार्य किया और उस कार्य में आप सफल नहीं हुए, तो आपने कल सुना ना कि हर गलती आपको कोई ना कोई सीख देती है, आप उस सीख को लेकर के आगे बढ़िए। आप चलते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, आपको रास्ते मिल जाएंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप ब्लेम गेम मत खेलिए, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये ब्लेम गेम मत खेलिए। जिस दिन आप हर चीज की जिम्मेवारी स्वयं के ऊपर लेंगे और एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो हर गलती को सुधारने की जिम्मेवारी स्वयं पर लेता है। और इसके लिए विजडम चाहिए। विजडम किसको कहा गया? विजडम डजंट मींस बुकिश नॉलेज। कार्य करने से पहले सोचना, विचार करना, उसके आउटकम पर फोकस्ड होना, ये है विजडम। और काम करने के बाद सोचना, काम करने के बाद एनालिसिस करना, इसको कहते हैं पश्चाताप। विजडम क्या है? आप जो कार्य करने जा रहे हैं आप पहले से उसके ऊपर सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, फिर आप उस कार्य को अंजाम दीजिए। आपने कर लिया फिर आप एनालाइज कर रहे हैं, फिर आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, तो आपको पश्चाताप होगा। इसलिए ब्लेम गेम खेलने के बजाय कोई भी कमी है, कोई भी मिस्टेक हो रही है, तो आप उसकी जिम्मेवारी स्वयं पर लीजिए, तो आप देखेंगे कि चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और नेक्स्ट है, आपके हर एक्शन में इफिशियंसी दिखनी चाहिए। आपके पास समय है, शक्तियां हैं, पावर है, लेकिन एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करता है। ना अपने पावर का दुरुपयोग कीजिए, ना अपने रिसोर्सेस का दुरुपयोग कीजिए, ना अपने टाइम का आप दुरुपयोग कीजिए। ठीक है, हमेशा आप बेस्ट आउटपुट दे सकेंगे अगर आप अपनी शक्तियों का सदुपयोग करेंगे तो। नेक्स्ट है फोकस ऑन द रिजल्ट। आप हमेशा नए नए तरीके अप्लाई करते रहिए, हमेशा अपडेटेड होते रहिए और अपने रिजल्ट्स पर फोकस रहेंगे आप, तो आपको जरूर अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। द नेक्स्ट मंत्र फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज कोलेबरेट एंड कम्युनिकेट। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, उनका स्लोगन क्या है? हाँ, बाजू वाले का हाथ पकड़िए, अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए, हाथ ऊंचे कीजिए। सबका साथ सबका विश्वास, ये है कार्यों को सफल करने का सबसे सुंदर मंत्र। सबको साथ में लेकर के चलिए और जिनके साथ आप कार्य कर रहे हैं उन पर विश्वास रखिए और उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट कीजिए। कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से आपको सबका साथ नहीं मिल पाता है। तो जो आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को संदेश देना चाहते हैं, आपका संदेश बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि सामने वाले के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और दूसरा, आप अगर एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं ना, तो बोलिए कम सुनिए ज्यादा। आज प्रॉब्लम क्या है, चाहे घर में हो या ऑफिस में हो या कहीं भी हो, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। लेकिन जब आप लोगों को सुनेंगे, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है उसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे, आप लोगों से काम ले रहे हैं, अच्छी बात है, पर आप उनके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसका भी ध्यान रखिए, उनकी भी कुछ समस्याओं को सुनिए कि वो व्यक्ति क्यों टाइम पर काम नहीं कर पा रहा है। कहीं उसको कोई हेल्थ का इशू तो नहीं है, कहीं उसको कोई फैमिली का इशू तो नहीं है, कहीं उसके कोई बच्चों का इशू तो नहीं है। तो जहां तक आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तब आपको मिलेगा सबका साथ और सबका विश्वास, आप जीतेंगे तो आप जिंदगी में सफल रहेंगे। और लास्टली, परिस्थितियां कैसी भी हों, कहां फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को बदल देंगे हम बाग में, जंग करेंगे जिंदगी के हर हौसले, आने दो मौत को भी सामने। सस्टेन कीजिए और इम्प्रूव करते जाइए, ये कुशल प्रशासक बनने का बहुत सुंदर तरीका है। आइए सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए और परिस्थिति कैसी भी हो, आपके साथ काम करने वाले लोग कैसे भी हो, आप हमेशा चलते चलिए, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते चलिए, रास्ते मिलते जाएंगे, आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जरूरत है कि आपका आत्मविश्वास कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो अभी एक पैराग्राफ बजेगा, सभी मेरे साथ गाएंगे और अपने अंदर के विल पावर को बढ़ाएं कि चैलेंज कैसी भी हो मुझे चलते जाना है। चलिए तालियां बजाते हुए,
चले चले रे भारा चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा
तुझको चलना होगा
तुझको चलना होगा
चलिए हाथ उठाइए
तुझको चलना होगा
उमंग उत्साह के साथ ये आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा
जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है आधी से तूफान से डरता नहीं है तू न चलेगा तो चले
मुझको चलना होगा मुझको चलना होगा
थैंक यू ओम शांति
तो कंचन बहन के लिए भी जोरदार तालियां बजा दे आप तालियां बजा ही रहे थे तो चलते ही जाना है रुकना नहीं है आगे बढ़ते ही रहना है तो किसी ने ठीक कहा है कि हौसला बुलंद कर हौसला बुलंद कर रास्ते पर चल दे तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा बस एक कदम रखने का हौसला कर काफिला खुद ब खुद बनता चला जाएगा काफिला खुद ब खुद बनता चला जाएगा तो हमारा ऐसा एक काफिला ऐसी एक हमारी आपस की जो टीम वर्क है जहाँ पर भी हम रहते हैं तो वहाँ तो पहल तो हमें ही करनी होती है और जब हम पहल खुद करते हैं तो काफिला बन जाता है तो कंचन बहन ने बहुत सुंदर मंत्राज आपको दिए प्रैक्टिकल कि कैसे हम गुड एडमिनिस्ट्रेशन अपने जीवन में सरल रूप से अपना सकते हैं तो हम अभी आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ हमारे बीच हमारे विशेष आमंत्रित मेहमान डॉक्टर विजय कुमार चड्डा जी आप IRS प्रिंसिपल कमिश्नर हैं इनकम टैक्स कानपुर से और आपका प्रोफाइल मैं देख रही थी तो काफ़ी जिसको कहे कि वंडरफुल क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन है आप ENT डॉक्टर भी हैं मेडिकल साइड भी और फिर इनकम टैक्स कमिश्नर तो ये कभी कभी बहुत ही कम कोइंसिडेंस होता है कि आपके जीवन के अंदर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं आपने बहुत ही अपने कार्यकाल में बहुत सी उपलब्धियां भी आपने प्राप्त की हैं जिसे मैं विशेष रूप से बहुत डिटेल होते हुए मैं सार में आप सभी को परिचय कराना चाहूंगी कि आप जो है इस समय जब आपने अपनी शुरुआत की IRS ऑफिसर ऑफ 1998 सिविल सर्विसेज एग्जाम बैच एज अ एकेडमिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर हिज एकेडमिक प्रोफाइल इंक्लूड्स LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड LM टैक्सेशन फ्रॉम OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत एंड MBA Finance from Mewar University. Besides this, आपने MBBS जो मैंने बताया कि बहुत विशेष प्रतिभा है आपके जीवन की वो है आपने MBBS किया मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड LNJPGB पंत हॉस्पिटल इंटर आलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी विद सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होल्डर फ्रॉम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनल एमबीबीएस एग्जाम में आपने बहुत सारी विशेषताओं को बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए, उसके साथ साथ आप जो है सर्व्ड डिपार्टमेंट इन की पोजीशंस एज अ डेप्यूटी कमिश्नर एंड सर्व्ड बिजनेस सर्कल सेंट्रल सर्कल एंड आल्सो इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशंस, साथ साथ ही इन द कैपेसिटी ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यू हैव बीन पोस्टेड एज अ कमिश्नर अपील्स सेंट्रल अपील नॉन सर्च अपील्स एंड CIT faceless appeals. You have been as a commissioner of income tax administration and taxpayer services for almost 3 years in the आपने जो इसमें ब्रैकेट में लिखा है PR chief commissioner of the income tax UP west and Uttarakhand and Kanpur. उसके साथ साथ आपने अटेंड किए शॉर्ट कोर्सेज इन इंटरनेशनल टैक्सेशन एट IBFD एम्स्टर्डम, विदेश में आपने सेवाएं दी हैं बहुत नीदरलैंड एंड OECD टर्की, इन सब देशों में आपका विशेष कंट्रीब्यूशन रहा है और ये बहुत सुंदर प्रतिभा के साथ अच्छा इनकी मीटिंग है ओके तो आपको परिचय हमने शेयर किया, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी दी है मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है वो ये है कि हमारे भ्राता अशोक महेश्वरी जी मैं परमिशन ले लूंगी डॉक्टर विजय कुमार जी से, अगर आप परमिशन दे तो हम पहले मिस्टर अशोक महेश्वरी से लेना चाहेंगे, क्योंकि जैसा आपको अभी अभी बताया है कि आपको जाना है किसी कार्यवश अभी यहाँ से, तो इज इट ओके आपका परमिशन ले ले लिस्ट के हिसाब से, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भ्राता अशोक महेश्वरी जी को। आप अशोक महेश्वरी जी भी एक बहुत ही अनुभवी पद पर कार्य कर रहे हैं, आप अशोक महेश्वरी जी वर्तमान में उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जयपुर में अपर महाप्रबंधक एडिशनल जनरल मैनेजर AGM के पद पर कार्यरत हैं, पूर्व में प्रिंसिपल चीफ सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर का अनुभव प्राप्त है, डिविजनल रेलवे मैनेजर में भी रहे हैं, आपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी प्राप्त किए हैं, जापान में हाई स्पीड रेलवे पर JICA ट्रेनिंग और इटली में SDA बोकानी बिजनेस स्कूल से भी आपने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ऐसी बहुत ही विशेष अनुभवी वक्ता को हम उनके विचार आज के विषय पर सुनना चाहेंगे। आमंत्रित करती हूँ भ्राता अशोक महेश्वरी जी को।
सर्वप्रथम मैं यहाँ पर ब्रह्म कुमारी संस्थान के हमारी स्टेज पे बैठी हुई दीदी एंड श्री विजय चड्डा जी जो PCIT कानपुर हैं और हमारे सामने बैठे हुए सारे ब्रह्म कुमारी संस्थान के सिस्टर्स एंड ब्रदर्स और यहाँ आए हुए विशिष्ट हमारे अतिथिगण जो इस सेमिनार का और इस आयोजन का डेफिनेटली पिछले 2-3 दिन से इसका बेनिफिट ले रहे हैं। मैं जस्ट आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान जैसा कि अब तक विदित है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, एक सेल्फलेस सर्विस जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है और स्पिरिचुअलिटी है, इस दो चीज़ों के द्वारा इन्होंने जो अबू राज जिसे कहा जाता है माउंट अबू, इसको एक सिंपल टूरिस्ट सिटी से बदल करके एक स्पिरिचुअल सिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा योगदान है ब्रह्म कुमारी का। नीचे पूरा तलहटी तक अगर आप आते हुए देखते हैं तो पूरा ब्रह्म कुमारी की संस्थान इतना सारा विकास कैसे हुआ है, वो भी सिंपल बिना स्वार्थ की सेवा प्रेम भाव और उससे जो आत्मीयता हुई है उससे जो लोगों का जुड़ाव हुआ है उसके द्वारा इतना महान कार्य अचीव हुआ है। और आज की तारीख में यदि हम देखें विश्व स्तर पर बात चल रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की, उसमें मेरे थोड़े विचार डिफरेंट है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को दीदी ने बताया लगभग मैनेजमेंट थ्योरी पे चल रहे हैं, बट उस थ्योरी पे चलने वाले कई वर्ल्ड लीडर्स हैं आज की तारीख में जिन्होंने पूरे देश के लिए एक तरीके से खतरा पैदा कर दिया है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से ब्रह्म कुमारी संस्थान का जो है रोल और दायित्व और बढ़ जाता है, जहां पर कि हमारी देश विदेश की जितने भी संस्थाएं हैं ब्रह्म कुमारी की, वो इस प्रकार की विचारधारा लाएं जिसमें बिना किसी स्वार्थ के सेवा की जाए, आत्मीयता के साथ काम हो और उस प्रकार बिना ह्यूमैनिटीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का मार्ग निकल के आए। जबकि आप सबको ये सब देखते हैं मीडियाज पे और न्यूज चैनल्स पे, जो विश्व में आज का सीन है वो बड़ा भयानक सीन है जिसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और दूसरी तरफ हम अगर इधर आकर के देखते हैं, जब आबू पे माउंट आबू में आए हुए हैं, यहाँ पे ब्रह्म कुमारी की स्टाइल या यहाँ का कार्य करने का तरीका, यहाँ की आत्मीयता, वो एकदम ऑलटूगेदर डिफरेंट है, जो वास्तव में दिल को सोचने के लिए झकझोरती है कि भाई ऐसा क्यों है, क्या अंतर क्या है कि हमारे जो वर्ल्ड लीडर्स या ग्लोबल लीडर्स हैं उनको इस प्रकार की ज्ञान नहीं है, या क्या सेल्फिशनेस का स्केल बहुत ऊंचा है। ये मेरे मन में ऐसे विचार पिछले कुछ समय से जब से मैं इधर हॉल में बैठा था मेरे दिमाग में आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, सीधी सी बात है, जहां पे कि आपको काम करके दिखाना है, जहां पे टीम की तरह काम करना है, वहां पे जो दीदी ने बताया पीपल फर्स्ट, आपको अपनी टीम के साथ मिलकर के चलना है तभी जाकर के काम होता है। जहां रही फाइल वर्क टाइप की वर्किंग होती है वो डिफरेंट होती है, उसमें आपको एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ता है, अच्छे से रिमार्क देने पड़ते हैं, पूरा दिमाग अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जो फील्ड वाली वर्किंग है या पब्लिक सर्विसेज वाली बात है, वहां पे आपको लगभग वही मौका मिलता है जो ब्रह्म कुमारी में, आपको एक निस्वार्थ सेवा करने का एक मौका मिलता है। आज जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो भी है, उनको पब्लिक के भलाई के कार्य करने होते हैं, उसमें पब्लिक की भलाई पहले देखी जाती है, उसी में इंटीग्रिटी भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। तो ये सब बातें बताई हैं दीदी ने, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं ये चाहता हूं कि जो संदेश ब्रह्म कुमारी इधर संस्थान दे रही है, क्या ये हम पूरे विश्व तक पहुंचा सकते हैं? क्या हम हिम्मत कर सकते हैं कि हमारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको भी ऐसे विचार उनको दिए जाएं ताकि पूरा विश्व समुदाय एक आध्यात्मिक ग्लोब की तरह यहाँ पे रहे, जिसमें कि हर जीव मानव इंसान जो कि कहते हैं भगवान के पुत्र हैं या भगवान के बच्चे हैं, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार हम इंसान भी भगवान के बच्चे हैं, जीव जंतु भी भगवान के ही बच्चे हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं, तो सबको रहने का जो है पूरा अधिकार वैसा ही होना चाहिए, बिना किसी कष्ट के और संयम से और प्रेम से रह सके। मैं अनुभव की जहां तक कार्य के अनुभव की बात है तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हमारा जो कार्य रहा है उसमें लगभग कहीं भी एक मिशन की तरह जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट वर्क्स में रहे हम या अदरवाइज मेंटेनेंस ऑपरेशंस में भी रहे हैं, तो पूरे जब सर्विस ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारा वर्क फील्ड में, बहुत सारा टाइम फील्ड में निकल जाता है, तब बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। अब लेटर स्टेज में ठीक है ऑफिस के कार्य होते हैं, बट दिमाग में वही भावना रहती है कि फील्ड वाले को क्या दिक्कतें आती है, किस प्रकार से दिन रात निकलना पड़ता है, किस प्रकार से फेलियर्स वगैरह ठीक करने होते हैं, किस तरीके से बेटर सर्विसेज देनी होती है। यह सारी भावनाएं रेलवे कर्मी में भी है और बाकी सारी सर्विसेज हो, चाहे पीएसजी हो, पीडब्ल्यू सब में होती है। हालांकि ये बात भी सही है कि पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से वो पूर्ण नहीं है, उसमें और सुधार की आवश्यकता है। लेकिन आप यकीन मानिए जो भी गवर्नमेंट सर्विस में है, जो कि पब्लिक सर्विसेज में है, वो पूरा दिन रात मेहनत करते हैं। और यहाँ के जो अनुभव की आने की बात है, कल रात को मैं लगभग 10 बजे आया था, आते ही यहाँ पे सैनी जी हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, आई वाज सरप्राइज, इतना अच्छा था, उन्होंने मेरे लिए रूम बुक कर रखा था। और जबकि मैं चिंतित था कि कहाँ जाके रहेंगे, सर्किट हाउस वगैरह, ये सब बोले नहीं आप सीधे इधर आइए। रात को चाय और दूध के बारे में भी पूछा उन्होंने, 10 बजे तो अच्छे खासे रेस्टोरेंट भी लगभग बंद होने को आ जाते हैं लास्ट ऑर्डर लेने। इतने प्यार और उसके साथ उन्होंने हमारा ध्यान रखा है, उसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी और संस्थान का हृदय से आभारी हूँ। यदि कोई रेलवे से रिलेटेड कोई भी कामकाज हो तो आप निशुल्क निसंदेह बताएं, जो भी आपकी आबू रोड पे भी अभी जैसा मैं डीआरएम अजमेर से बात कर रहा था तो वहां पे भी आपके लिए रेस्ट प्लेस के लिए जगह दी गई है स्टेशन में, ताकि जो भी ब्रह्म कुमारी के सदस्य आते हैं या जाते हैं वो लोग वहां पे रुक सकें, तो वहां पे आपको जमीन आवंटित कर दी गई है, तो उस पर आप अपना कार्यभार भी जो है शीघ्र कराएं, ताकि आपको भी बेनिफिट मिले। और मुझे पता चला कि उसमें आप ऊपर एक टीटी के लिए भी एक रूम बना रहे हैं, ताकि टीटीज जो हैं वो भी बैठ सकें, तो आप अच्छा करें, ये विन विन वाली बात है। रेलवे और ब्रह्म कुमारी संस्थान आपस में मिलकर के अच्छा ऐसा काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, थैंक यू। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे एक्चुअली लगभग नीचे 11:30 बजे आबू रोड पे एक हमारे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करनी थी और सब आए हुए हैं अजमेर से, इसलिए मेरे को जल्दी निकलना है, नहीं तो मैं भी यहाँ पे और इसका सेशन का फायदा उठाना चाहता। थैंक यू।
हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे भ्राता महेश्वरी जी का, उन्होंने बहुत ही जिसको कहे कि अपने अनुभव से तो शेयर किया ही, लेकिन आपने जो सहयोग देने के लिए भी हमारे को आगे से बढ़कर जो इस प्रकार से अपने शब्द कहे हैं एश्योरेंस के, वो भी बहुत ही हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन का आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं कि आपने जो अनुभव किया वो तो शेयर किया, लेकिन साथ ही साथ हमें प्रोत्साहित भी किया है, इंस्पिरेशन भी दी है, जो कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपके लिए बहुत हम धन्यवाद देंगे, जोर से तालियां बजाएंगे, और हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि अभी तो आपके पास समय कम है, लेकिन आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमारे साथ और भी समय व्यतीत करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय भ्राता अशोक महेश्वरी जी के बाद डॉक्टर विजय कुमार चड्डा जी, जिनका कि मैंने आपको परिचय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय को भी एडजस्ट किया, और अभी हम आपके द्वारा बहुत ही अनुभवी विचार सुनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय एक कंचन दीदी, भाई साहब अशोक महेश्वरी जी, जो समय की व्यस्तता के होने के कारण अभी अभी वो मंच से गए हैं, दीदी सरीन दीदी, और भाइयों और बहनों, मैं सरीन दीदी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरा बड़ा एलैबोरेट परिचय दिया। यदि एलैबोरेट परिचय हो तो उस लेवल तक अपने आप को जस्टिफाई करना एक परीक्षा बन जाती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस लेवल तक जस्टिफाई करूँगा। तो हम लोग यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस में आए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेजर्स की कॉन्फ्रेंस है, हम लोग एक पब्लिक के लिए रोल मॉडल हैं। रोल मॉडल में ब्रह्म कुमारीज का क्या महत्व हो सकता है कि हम उस रोल मॉडल के जो हमारा रोल है उस पे हम खरे उतरें। तो मैंने इसके लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हुए कुछ स्लाइड्स बनाई थी, ताकि मैं उस स्लाइड्स के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ अपने विचार साझे कर सकूं। तो ये तो इस प्रेजेंटेशन का एम है कि हम लोग इम्प्लीमेंट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे हम ऑफिस में हों चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हों, कैसे कर सकें, और मेडिटेशन का क्या रोल है उस इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करने में। तो स्लाइड्स तो 10-12 हैं, पर मैं जैसे कहीं पे हम लोग इनवाइट होते हैं तो हम लोग ये जानने में इच्छुक रहते हैं कि बफे में क्या होगा, क्या दाल होगी, शाही पनीर होगा, क्या क्या होगा। तो उसी तरह से मैंने एक पहले ग्लिम्स आपके लिए बनाया है कि जो मेरी स्लाइड्स हैं उसमें क्या क्या स्लाइड्स में मैं कवर करूंगा। टाइम तो एक लिमिटेड है, रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होते हैं, तो वो जो स्लाइड्स हैं, एक डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरप्रिटेशन, रिमूविंग द मेंटल ब्लॉक बाई वे ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, डेवलपिंग द नॉलेज स्किल एंड एक्सपर्टाइज टू चेंज द एडवर्स एनवायरमेंट टू द एनवायरमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फिफ्थ कंट्रोल यूअर टीम एंड डेवेल्प द फ्रेटर्निटी इन द टीम, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एंड सेवंथ इज द हाउ टू आंसर द इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. आप एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आप वेरियस स्टेक होल्डर से हमेशा घिरे रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है बड़े इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. हाउ टू हैंडल दोज इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड डेवलप द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द अदर्स एंड देन इज द हाउ टू कीप योर पीस एंड द पीस ऑफ अदर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कंक्लूजन. तो अब मैं आपको एक एक स्लाइड के गो थ्रू करवाता हूं जो कि वैसे सिंपल है. डोंट गो ऑन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द थिंग्स. एक स्लाइड है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स, जो भी रोल मॉडल में हैं उनको जरूर अप्लाई करनी चाहिए. और वो रोल मॉडल में अप्लाई इसलिए करना भी जरूरी है ताकि आपके सामने क्या आया है आप उसका सब्सटेंस जान सके, नॉट द फॉर्म. फॉर्म बिल्कुल अलग हो सकती है सब्सटेंस से. यदि आप वो स्किल्स डेवलप करते हैं, वो एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करते हैं, तो आप बड़ी जल्दी उस चीज को पकड़ सकते हैं और चीज का सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं. और आपको जिस रोल पे गवर्नमेंट ने आपको पदासीन किया है, वो गवर्नमेंट भी वही चाहती है कि आप कम समय में उस चीज को एनालाइज कर सके. और वो चीज जो एनालिटिकल स्किल्स है, वो आपको मेडिटेशन से ही आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ सकती है. आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना जब सीख जाते हैं, तो 1000 पेजेस की फाइल में से कौन से पेज पे कौन सा पैराग्राफ उस फाइल की जान है, उस फाइल की ऑपरेटिंग पैरा कौन सा है, तो आप 1000 पेजेस पढ़ने की बजाय आपका ध्यान उस पैरा ही की तरफ जाएगा. दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. तो उस चीज को आप एनालिटिकल स्किल्स अपनी शार्पन करके कर सकते हैं और वो मेडिटेशन से ही पॉसिबल है. जब मेडिटेशन आप करते हैं तो आपकी जो इनर स्टिलनेस हो जाती है, आपका माइंड जो भटकता है इधर उधर, वो एक स्टिल हो जाता है. उससे आपकी कंसंट्रेशन की पावर्स बढ़ती है, एनालिसिस डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को बिट्स एंड बिट्स में एनालाइज करने की पावर बढ़ती है, जिससे कि आप सॉल्यूशन बड़ा अच्छा तरह से और एक सर्व मान्य सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. एक बात आती है, हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. हमारे सामने जो आ रहा है इससे गार्बेज, हम उसको एनालाइज करके क्या हम फ्लावर्स आउट कर रहे हैं या हम गार्बेज आउट कर रहे हैं. आप क्या वैल्यू एडिशन अपनी पोस्ट पे कर रहे हैं जिसके लिए आपको रिक्रूट किया गया, जो आप रोल प्ले कर रहे हैं, आप उस पोस्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं? आपने क्या वैल्यू एडिशन किया? आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आई, गार्बेज इन आया, तो आपने क्या उसको सॉल्व करके फ्लावर्स आउट दिए? तो ये विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. तो ये सब मेडिटेशन के द्वारा ही पॉसिबल है. सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स ए डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरप्रिटेशन. हम लोग सिविल सर्वेंट हैं, कई लोग मैनेजर्स हैं, कई लोग यहाँ पे रोल मॉडल हैं. पब्लिक हम लोगों को एक माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखती है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी दिनचर्या क्या है, हम लोग कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पॉलिटिकल मास्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, नेताओं के पीएस भी लगते हैं. तो आपको क्या प्रायोरिटी देनी है, इस डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरप्रिटेशन बताता है. रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, आपको किसको प्राथमिकता देनी है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरप्रिटेशन बताता है. मंत्री जी कहते हैं इसको देख लेना, एक सेंटेंस को, किसी काम को बोलते हैं इसको देख लेना. दूसरी बार कहते हैं अरे इसका क्या हुआ. तीसरी बार बोलते हैं मुझे 5 बजे तक इसका बताओ क्या कर, क्या किया आपने. तो क्या ये तीनों चीजें बराबर हैं? ये बराबर नहीं है. पहली बात सरसरी तौर से कही उन्होंने किसको देख लेना, दूसरा कहा उससे थोड़ा स्ट्रेस देके, और तीसरा काम प्राथमिकता के रूप में करना है आपको. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरप्रिटेशन आपको लिमिटेड रिसोर्सेस में ये बताता है कि आपको प्राथमिकता किसको देनी है, आपको प्रायोरिटाइज अपने वर्क को कैसे करना है. आपने अपने जीवन में या अपने कार्य क्षेत्र में या उस दिन आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेड है. क्या आपसे उस दिन एक्सपेक्टेड है। सो प्रायोरिटीज, गोल तो वैसे ये है कि जो जो गोल तो जो ये गोल हमारा तो ये है कि जो लाइन है उसमें जो लास्ट पर्सन खड़ा हुआ है हम उसको भी सेटिस्फाई कर सकें, पर रिसोर्सेस लिमिटेड होने के कारण वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम लोगों को अपनी कार्य की प्रायोरिटीज निश्चित करना बहुत जरूरी है, और वो प्रायोरिटीज आपको यदि आप ये डॉक्ट्रिन फॉलो करेंगे तो वो आप अपनी प्रायोरिटीज निश्चित कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड इज रिमूविंग द मेंटल ब्लॉक बाय वे ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब कार्य जब आप देखते हैं, कार्य एक बहुत बड़ा कार्य है, कॉम्प्लिकेटेड कार्य है, जिसमें कई लोगों को आपको बीच में उनकी हेल्प चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते, तो एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है। मेंटल ब्लॉक नहीं होने देना। मेंटल ब्लॉक कैसे नहीं होने देना, मेंटल ब्लॉक कैसे नहीं होने देना, तो मेंटल ब्लॉक आप किसी कार्य को जब देखते हैं तो उसको एज ए होल मत देखिए, उसको इकट्ठा मत देखिए, उसके स्मॉल बिट्स बिट्स करके देखिए। ऑलवेज एनालाइज वर्क बाई डिवाइडिंग दैट वर्क इंटू स्मॉल बिट्स, और पहले उस स्मॉल बिट्स को उसको एनालाइज कीजिए, उसको स्मॉल बिट्स पे बांटिए, और फिर उसमें जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है उससे शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो कार्य एक देखने में जो असंभव लग रहा था वो आपके इस अप्रोच से वो सारा कार्य हो गया, वो सारा कार्य एक सिंपल रूप से हो गया। और जितना कार्य, जितना आप कार्य को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ताकि जो दूसरे आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी आप समझा सकें और एक टीम वर्क से वो कार्य पॉसिबल हो सके, वो उतना ही कार्य को आप सिंपल कीजिए। आजकल के समय में हम लोग प्रोफेशनल से डील करते हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं हम लोग, मैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मेरे सामने चार्टेड अकाउंटेंट्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, तो मुझे अपनी नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टाइज को एनहांस करना बहुत जरूरी है ताकि मैं उसी लेवल पे रहूं जिस लेवल पे वो लोग हैं। तो इसी तरह से हम लोग जिस फील्ड में हैं हम अपनी अपनी नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टाइज अलोंग विद द मेडिटेशन एनहांस करते रहें, ताकि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो हम मिनिमम एफर्ट्स में ये सब अचीव कर पाएं। अब एक नया टूल भी आ गया जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो, कैन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैन इट रिप्लेस द ह्यूमन इंटेलिजेंस? तो आंसर इज बिग नो। ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन ऑलवेज बी एनहांस्ड थ्रू मेडिटेशन, थ्रू कॉन्सेंट्रेटिंग माइंड एटसेट्रा, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एनहांस्ड। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस हम लोगों को ईश्वरीय देन है, उसको एनहांस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन के लिए कोई समय की जरूरत नहीं है, उठते बैठते चलते फिरते कभी भी आप कर सकती हैं। तो इसके लिए कोई ये नहीं बोला गया कि आप एक इस तरह से बैठिए। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि भाई मेरे को कुछ समय निकाल के ये करना है, पर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जब आप अपने रूटीन के कार्य करते हुए भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज कंट्रोल योर टीम एंड डेवलप द फ्रेटर्निटी ऑफ द टीम। ये जो पॉसिबल है ये एक आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने से ही हो पाएगा। आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपनी टीम को दें, उनकी सुने, उनको यदि उन्होंने कुछ गलती भी की है तो वो आप हेड ऑन कोलिजन पे मत बोलिए, पहले उनको अप्रिशिएट कीजिए। यू जस्ट अप्रिशिएट योर टीम मेंबर्स, अरे आपने तो इतना अच्छा काम किया है, पर थोड़ा सा उसको ऐसे कर लेते तो हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता। तो जिससे कि उनको लगे कि ये मेरी गलती को एक इम्प्रूव कर रहे हैं, वैसे मैं अच्छा काम कर रहा हूं पर यदि मैं ये भी इम्प्रूव कर लूंगा तो मैं एक और बढ़िया काम करूंगा। तो उसको साथ रखने के लिए आपको अपनी टीम को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, ना केवल अपनी टीम को बल्कि अपने आप को भी अप्रिशिएट कीजिए कि अरे मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं पर मैं और इसमें कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। it has always a scope of enhancement. काम इतना ज्यादा है, resources limited हैं, हर काम में हम अपनी टीम को नहीं बता सकते कि आपको कैसे करना है. Develop the standard operating procedures. यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको आपने किस तरह से करना है. आपकी टीम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. योर टीम शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन. दे शुड हैव क्लैरिटी ऑफ द वर्क विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप एस्टेब्लिश कीजिए. उनको भी पता होना चाहिए कि कोई ये प्रॉब्लम आई है कि हमारे बॉस, हमारे जो सुपरवाइजर है, हमसे चाहते क्या हैं. उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप करना इज वेरी एसेंशियल. हायरार्की के लिए भी एसेंशियल है और एक वर्क आउटपुट, क्वालिटी वर्क आउटपुट के लिए एसेंशियल है. हाउ टू आंसर द इम्प्रैक्टिकल एंड इररेलेवेंट क्वेश्चंस. एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हम लोग एक ग्लास हाउस में बैठे हुए हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर फेसिंग इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. अब मैं जैसे राजधानी से आ रहा था तो आई नेवर डिस्क्लोज माई आइडेंटिटी एज ए सिविल सर्वेंट्स. आई ऑलवेज से आई एम ए डॉक्टर. पर वो डॉक्टरी तो 30 साल पुरानी हो गई, मुझे इतना याद भी नहीं कि मेडिसिन क्या थी और क्या नहीं थी. पर कॉमन पर्सन से जरूर मेरे को ज्यादा पता है क्योंकि मैं एक ट्रेन डॉक्टर रहा हूं. तो एक बार जब मैं पहले कभी आ रहा था तो बात चल पड़ी कि सिविल सर्विस की. तो जो मेरे साथ फेलो पैसेंजर्स बैठे हुए थे कहते, सर आजकल वो बात नहीं रही सिविल सर्वेंट्स में जो पहले होती थी. आई नो दिस इज एट कंप्लीटली इररेलेवेंट क्वेश्चंस. अब सिविल सर्वेंट्स को हम कोई वीनस और मार्स ग्रह से तो लेकर आए नहीं. हमने तो इसी सोसाइटी से रिक्रूट किया उनको. सोसाइटी की डिग्रेडेशन है तो सिविल सर्वेंट्स की डिग्रेडेशन है. तो ये एक पब्लिक को भी समझना होगा. यूपीएससी रिक्रूट करती है सिविल सर्वेंट्स को इसी सोसाइटी से. यदि आप सोसाइटीज की वैल्यू को एनहांस करेंगे, जो कि ब्रह्म कुमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पॉसिबल है थ्रू कल्चरल रीवेकनिंग, स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन, यदि आप सोसाइटी का लेवल बढ़ाते हैं तो जो हम सोसाइटी से सिविल सर्वेंट्स रिक्रूट कर रहे हैं उनका लेवल भी बढ़ेगा. और सेकंडली यदि वो रिक्रूट हो गए तो बाई इम्पार्टिंग नॉलेज ट्रेनिंग थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म कुमारीज हम उनके लेवल को एनहांस कर सकते हैं. तो ऑलवेज कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम द इम्प्रैक्टिकल एंड इररेलेवेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा. ये इट्स द वेस्टेज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स विच इज टाइम. देन नेक्स्ट इज डेवलप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द अदर्स. हम लोग अपने जो को टीम मेंबर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, यदि हम उनके लिए एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड रखेंगे तो वो भी हमारे लिए एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड रखेंगे. छोटी छोटी जो उनकी गलतियां हैं, ट्राई टू इग्नोर देम. हम उनको गलतियों को हाईलाइट करके उनको सुधारेंगे नहीं, बल्कि उनको हम एलिनेट कर रहे हैं. तो जो ये हमें एलिनेशन है इसको रोकना है, उनकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना है, सो दैट वो अपने आप ही रियलाइज करें कि उनको कैसे करना है. सबकॉन्शियस माइंड इज इन पीस एंड हार्मोनी विद द सराउंडिंग्स. जब हम एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप करते हैं और ये एक पॉजिटिव वाइब्स और ऑरा देता है. ऑरा का मतलब जो हमें दिखता नहीं है, इट्स नॉट अ फिजिकल बट एक सेंस ऑफ रेडिएशन ऑफ पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम अवर माइंड, फ्रॉम अवर फेस, फ्रॉम अवर बॉडी, ये एक ऑरा देता है. और जो हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो इससे they can perform in their best possible way. Next is keep your peace and peace of others. यदि हमारा mind peaceful है तो हम किसी भी complex situation को बड़ी अच्छी तरह analyze कर सकते हैं. We can arrive at the decision कभी हाबड़ दौड़ में कोई भी काम नहीं करना, स्पेशली जब वो हजारों लाखों लोगों को इफेक्ट कर रहा हो। ऑलवेज टेक डिसीजन एट थ्री डिफरेंट टाइम्स एट थ्री डिफरेंट प्लेसेस। हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि एम्परर अकबर कभी भी कोई ऐसा फरमान जारी करने से पहले उन्होंने अपने मंत्रियों को एडवाइजर्स को बोल रखा था, जब तक मैं तीन बार तीन डिफरेंट प्लेसेस पर ये रिपीट ना करूं डोंट इम्प्लीमेंट। सो कहने का मतलब यही है कि आप एक बार जब उसको बोलते हैं तो आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, उसका क्या इफेक्ट आएगा ये आपने आपको भी नहीं मालूम। हो सकता है आपसे कुछ ऐसा हो जाए जिसमें आपको बाद में रिपेंट करना पड़े। तो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उनको एटलीस्ट विजिट थ्री टाइम्स एट थ्री डिफरेंट प्लेसेस एट थ्री डिफरेंट टाइम्स। एक बार ऑफिस में सोचिए, एक बार फैमिली में सोचिए कि भाई मैं वो करने जा रहा हूँ, वो ठीक करने जा रहा हूँ, इस तरह से। नो, ये तो मैंने आपको एक बर्ड आई व्यू दिया, एक ग्लिम्स ऑफ रोल मॉडल जो एडमिनिस्ट्रेटर से एक्सपेक्टेड है, और ब्रह्म कुमारी के जो वर्क हैं वो उसको कैसे इम्प्रूव करता है दिया। ये पूरा सब्जेक्ट कवर नहीं करता, बट जो मेरे को समय दिया गया उसमें मुझे लगता है इतना ही पॉसिबल था। तो नाउ आई कंक्लूड बाय सेइंग द फ्यू थिंग्स। सेग्रीगेट द रूटीन इशूज फ्रॉम द इम्पोर्टेंट एंड द डिमांडिंग इशूज, ताकि आपको अपनी प्रायोरिटी पता चल सके कि मुझे सबसे पहले करना क्या है। देन नेवर जंप द हायरार्की। आपने कोई अच्छा काम किया है, अपने बॉस को बतलाएं। उसके बॉस को बतलाएंगे तो नीचे वाला नाराज, बीच वाला नाराज हो जाएगा, ठीक है। फिर देन आपको क्राइसिस का प्रेसिपिटेशन अवॉइड करना है, प्रिवेंट करना है। आपको टिप ऑफ आइसबर्ग से आपको पता चलना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ऑलवेज हैव इनफॉर्मल वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपने एम्प्लॉय से पूछिए क्या हाल है, आपके बच्चे ठीक हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ऑलवेज हैव इनफॉर्मल वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इट गोज अ लॉन्ग वे। तो एम्प्लॉय को ये महसूस होना चाहिए कि ये मेरे, आई एम नॉट ओनली अ प्रोडक्टिव मशीन फॉर हिम, ये मेरे बारे में ध्यान रखता है, मेरे बारे में केयर करता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। इंडिपेंडेंस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, इट हैज सोशियो इकोनॉमिक एंगल्स आल्सो। तो हम लोगों ने कई इंक्लूसिव प्रोग्राम्स चलाए हमारी वेरियस गवर्नमेंट्स ने, ताकि जो डाउन रोडन है, लोअर रंग्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनको भी इंडिपेंडेंस जो मिली उसके फ्रूट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। पर अब जो एक नया एस्पेक्ट जुड़ रहा है, कल्चरल इंडिपेंडेंस। हम लोगों का मोटो है, जो प्रेजेंट हमारी पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन है, कि बाय 2047 वी शुड बी अ डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है या कल्चरल इंडिपेंडेंस भी है? ये जो हम लोग इस डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें जरूर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर साथ साथ में उसके बाई प्रोडक्ट भी आएंगे, नेगेटिव बाई प्रोडक्ट भी आएंगे, लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी आएंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो मटेरियलिस्टिक बनता जा रहा है। तो उन चीजों से बचने के लिए मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब की रेलेवेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं। एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा उसका स्कोप को बढ़ाया, वो है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है, मेडिटेशन शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 21, इट शुड बी द राइट टू लाइफ। सो हमारे समाज में 19वीं शताब्दी में हम लोगों ने कई सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट देखी, बाइगैमी प्रिवेंशन, पॉलीगैमी प्रिवेंशन, सती प्रथा प्रिवेंशन, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन। तो अब जो हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देख रहे हैं, इट इज कंडक्टेड, इट इज स्टार्टेड, इट इज बीइंग कैरिड बाय द ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन। सो हम लोग जरूर अप्लॉज करें, खुले मन से, तालियों से इस चीज को माने कि ब्रह्मा कुमारी हमारे लिए एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। हमारी कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है? हमारी पॉपुलेशन जो हमारे यंगस्टर हैं, आप सबको मालूम है इंडिया सिटिंग ऑन द डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब है? हम लोगों की जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है बाकी कंट्री से सबसे ज्यादा है। चाइना की पॉपुलेशन ओल्ड एज हो रही है, जापान की पॉपुलेशन हो चुकी है, उनकी पॉपुलेशन आने वाले सालों में प्रोडक्टिव नहीं रहेगी, पर हम लोगों की पॉपुलेशन अभी यंग लेवल पे पहुंच रही है। हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत प्रोडक्टिव रहने वाली है। तो जो पॉपुलेशन प्रोडक्टिव रहने वाली है, जो हमारे आईटी सेंटर्स हैं, गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे, लाइक दीस जो सेंटर्स हैं, वहां पर हम लोगों के यंगस्टर्स, गर्ल्स एंड बॉयज, दे आर वर्किंग डे एंड द नाइट। सो उनको, उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम काफी ज्यादा है, जो कि पहले कभी नहीं थी। तो वो लोग कुरीतियों के शिकार ना हो जाएं, वो लोग एक कल्चरल अवेकनिंग में हमारे स्टेक होल्डर्स बने, तो उनके लिए ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। वो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन, मुझे पता चला कि वो वहां पे भी अपने सेंटर्स खोल रही है नियर आईटी, फिनटेक, टेक फिन कंपनीज के सेंटर्स पे, ताकि उनको भी मेडिटेशन के जरिए उनको एक कल्चरल अवेकनिंग की जा सके। तो दीदी, आई थिंक आई हैव नॉट टेकन मच टाइम, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। ब्रह्मा कुमारी के साथ आप जुड़े रहें, परमपिता परमात्मा हम सब पर अपनी कृपा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता विजय कुमार चड्ढा जी, आपने बहुत सी अच्छी बातों को हमारे बीच शेयर किया। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात आपने जो कही कि जो कॉन्स्टिट्यूट का आर्टिकल 21 में आपने कहा राइट टू लाइफ में मेडिटेशन को इंक्लूड करना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और वास्तव में जब इतनी बार मेडिटेशन शब्द को यहाँ यूज किया गया है और ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लक्ष्य ही है कि मेडिटेशन के द्वारा जो है कैसे गुड एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं, और जब सबके पॉइंट्स को मैं देख रही थी, क्योंकि आपने ग्रेटिट्यूड की बात की, मेरा यूएस में कई बार जाना हुआ रिसर्च के दौरान, तो एक बार जब हम एक प्रोग्राम में थे वॉशिंगटन में, तो वहाँ पर एक डॉक्टर थी मेरे साथ में जिसकी पूरी स्टडी ग्रेटिट्यूड पे थी, और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि जितनी बार दिन में आप थैंक्स बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो उतनी बार आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है और आपके जो सेल्स हैं अनब्लॉक होते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर जिसकी एक लार्जेस्ट स्टडी है, वो भी हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ का मॉडल है, माउंट आबू में ही है, हमने आज 9000 से भी अधिक हार्ट के पेशेंट्स को विदाउट बायपास सर्जरी ठीक किया है। और ये स्टडी शुरू की हमारे फॉर्मर, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि अभी जो बात हो रही थी उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, मेडिटेशन और एक्सरसाइज को लिया, और भी बीमारियां जो हैं, चाहे डायबिटीज है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उसमें बहुत सुंदर हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो जैसे बात हो रही थी कि गुड गवर्नेंस की, तो जो सभी ने शेयर किया, एक जो गुड शब्द है बहुत अच्छा टेस्ट देता है माइंड के अंदर, तो जी फॉर जेंटल एंड ग्रेटिट्यूड एंड जीनियस। जितने हम नम्र रहेंगे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा सकारात्मक रहिए। ओ दोबारा आ गया है, उसका भी एक रीजन है, आउट ऑफ वे। मैं डॉक्टर किरण बेदी के साथ बहुत बार रही हूँ और मैंने एक उनकी क्वालिटी देखी, पहली आईपीएस ऑफिसर, आउट ऑफ वे, हमेशा ही दूसरों की मदद करने में वो आउट ऑफ वे जाती हैं।
तो जब हम आउट ऑफ वीक जाके किसी की मदद करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, वो एक बहुत सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। और डी का मतलब है, क्या कहेंगे, राइट हैंड ऊपर करें, डू योर बेस्ट, अगेन डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, हमें अच्छा ही करना है। तो चलिए ये 3 मिनट हम वाइंडिंग अप जो कर रहे हैं, और मंत्र शब्द को यहाँ यूज किया गया है जो एंशियंट हमारा एक शक्ति है जिसका मेडिटेशन से बहुत सुंदर संबंध है। मेडिटेशन इज अ इनर जर्नी, ये अंदर का एक मंत्र है जो पहला हमें एक सिग्नल देता है ब्रेन और माइंड को, और वो सिग्नल है आई एम अ पीसफुल बीइंग। जितनी बार इसको मन में आप रिपीट करते हैं, अनुभव करते हैं, इस मंत्र से आपके मन को शांति मिलती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी 3 मिनट के लिए सभी स्ट्रेट बैठ जाएं, माइंड को पीसफुल कर लें, और एक अनुभव के साथ जाएं कि कैसे हम मेडिटेशन मंत्र को यूज करें गुड गवर्नेंस के लिए। मन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे, शांत कर लेंगे। टर्न योर अटेंशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मेडिटेशन एक इनर जर्नी है, एक अंतर मन की यात्रा जो हमारे डोपामाइन, फील गुड हार्मोन्स और केमिकल्स को इंक्रीज करती है। टर्न योर अटेंशन इन द मिडल ऑफ योर फोरहेड, भीतर की एक शक्ति जिसको सोल एनर्जी कहते हैं, सोल सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, फील द एनर्जी इन द मिडल ऑफ योर फोरहेड। मंत्र की शुरुआत, मंत्र एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और मेडिटेशन भी पॉजिटिव वाक्यों को दोहराने की एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत एक शक्तिशाली वाक्य से होती है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, फील द एनर्जी इन द मिडल ऑफ योर फोरहेड। मैं शक्तिशाली हूं, गुड गवर्नेंस के लिए आई अलाउ पॉजिटिव थॉट्स इन माई लाइफ, इन माई माइंड। हाईएस्ट शक्ति, सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ हमारा संबंध गुड गवर्नेंस को शक्तिशाली बनाता है। आइए फील द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी, द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर, जो हमें स्व अनुशासन, स्व सशक्तिकरण, समर्पण की शक्ति
शांति प्रदान करता है। मन का सर्वशक्तिवान से ये संबंध ही मेडिटेशन है। मन को शक्तिशाली मंत्र जिसे मन मना भाव कहते हैं, गीता का सार, मन मेरे में लगाओ तो जीवन में खुशी, शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है। तो आइए सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्ति ले, अपने आप को संतुलित कर ले, एक नया दृढ़ संकल्प ले, कि आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। और यहां से जाने के बाद भी हम अपने जीवन में ये लिया हुआ दृढ़ संकल्प सुबह अवश्य ही मेडिटेशन करते हुए दोहराएंगे। यही है मंत्र ऑफ गुड गवर्नेंस, सर्वशक्तिवान का धन्यवाद करें। और ओम मंत्र जो यूनिवर्सल है, जिसे कहते हैं साउंड ऑफ सन, तो तीन बार मेरे साथ ओम मंत्र उच्चारण करेंगे। आजकल मेडिकल साइंस भी इसको हेल्थ के लिए बेनिफिशियल मान रही है। तो आइए एक साथ यहां से शांति के, शक्ति के वाइब्रेशन भेजें। और मैं आमंत्रित करती हूँ वर्णिका बहन को, जो यहाँ पर आएंगे और कुछ एक्टिविटी भी कराना चाहेंगे। और फिर से मैं हमारे सभी आदरणीय स्पीकर्स का बहुत दिल से धन्यवाद, और आप सभी इस प्रकार से हमारे बीच बने रहे ऑडियंस के रूप में। आप भी गुड ऑडियंस हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।